नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा ने अप्रवासन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत दुनिया की सबसे कम आबादी वाले अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान के साथ रहने का सुरक्षित स्थान रहा है। संसद ने वित्त विधेयक पारित किया। केंद्रीय बजट 2025-26 की अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी। सरकार सहकारी आधारित सहकार टैक्सी सेवा शुरू करेगी। रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल प्रणाली और हल्के वाहनों की खरीद के लिए 2500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में संदिग्ध विद्रोहियों ने ग्वादर जिले में पंजाब प्रांत के 6 लोगों की हत्या की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का नई दिल्ली में रंगारंग समापन हुआ। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा ने आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य आव्रजन कानूनों को आधुनिक बनाना है। इसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज, वीजा पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। कानूनों की अधिकता और परस्पर व्याप्तता से बचने के लिए ये विधेयक लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने, भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए वैश्विक मानदंड सुनिश्चित करने और अनुसंधान तथा विकास और विनिर्माण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
2047 के हमारे लक्ष्य के अंदर एक सशक्त अप्रवासन नीति का बहुत बड़ा महत्व है और अप्रवासन एवं विदेशियों विषयक विधेयक 2025 प्रणाली को सिंप्लीफाई करेगा, स्ट्रीमलाइन भी करेगा, सिस्टमेटिक बनाएगा और सुरक्षित मतलब सिक्योर भी करेगा। ये ट्रांसपेरेंट भी बनेगा, ट्रैक ड्रिवन भी बनेगा, टाइम बाउंड भी बनेगा और ट्रस्टवर्दी भी बनेगा।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रवासियों का स्वागत करने और उन्हें संरक्षण देने का भारत का लंबा इतिहास है।
भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइक्रो माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती है।
श्री शाह ने कहा कि शरण की बजाय स्वार्थी इरादों से भारत आने वाले समुदायों की संख्या भी बढ़ रही है। चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, यदि वे शांति भंग करने के लिए देश में आए हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि विधेयक से सरकार को ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने में मदद मिलेगी जो सुरक्षा के लिए खतरा हैं। संसद ने केंद्रीय बजट 2025-26 का अनुमोदन कर दिया है। राज्यसभा ने आज वित्त विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक संख्या 3/2025 चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। इसके साथ ही 2025-26 के लिए बजटीय प्रक्रिया पूरी हो गई है। लोकसभा ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी थी। वित्त विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 का उद्देश्य कर निश्चितता लाना, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना और भारतीय करदाताओं का सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि नए आयकर स्लैब सरलीकरण लाए हैं। विधेयक में औद्योगिक वस्तुओं के लिए कुछ सीमा शुल्क दरों को हटाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि कई भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेगी। सहकारिता के माध्यम से संचालित ये सेवा उबर और ओला के मॉडल पर काम करेगी। लोकसभा में श्री शाह ने कहा कि ये कदम सहकार से समृद्धि के अनुरूप उठाया गया है।
3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और कुछ ही महीनों में ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो टू व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और फोर व्हीलर का भी करेगी और उसका मुनाफा वो ड्राइवर के पास जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
CPGRAMS, Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System.
ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CPGRAMS एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है
और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों के जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CPGRAMS, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉगिन करें CPGRAMS।
ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्रालय ने आज नाग मिसाइल सिस्टम, एक टैंक रोधी हथियार प्लेटफॉर्म और 5,000 हल्के वाहनों की खरीद के लिए 2,500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नामिस और हल्के वाहनों की खरीद से स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हुर्रियत से जुड़े दो और गुटों ने अलगाववाद का रास्ता छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी गुटों तहरीकी इस्तेकलाल और तहरीके इस्तेकामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में भरोसा जताया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अलगाववाद अंतिम सांसें ले रहा है और एकता की जीत पूरे कश्मीर में गूंज रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान हितैषी है और किसानों के कल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर जिंसों की खरीद की जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों के उत्पादों की खरीद MSP से कम दाम पर न की जाए।
केंद्र सरकार ने फैसला किया है, तुअर, मसूर, उड़द, किसान जितना भी इसका उत्पादन करेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। बस किसान को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेरी किसान भाइयों से भी अपील है और सभी राज्य सरकारों से मैं अपील करता हूं कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करें।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण का शुभारंभ किया। श्री रेड्डी ने कहा कि कोयला क्षेत्र ने चालू वित्त वर्ष में 1 अरब टन से अधिक कोयला उत्पादन करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। चाइना को छोड़ दिए तो भारत एज ए नंबर 1 कोल प्रोड्यूसर है। चाइना को माइनस किए तो नंबर 1 कोल कंज्यूमर भी है और दुनिया के 2nd लार्जेस्ट कोल माइन आज भारत में छत्तीसगढ़ में ग्रेवरा में है। ऐसी आज भारत का जो पावर जनरेशन में कोल सेक्टर का 74% थर्मल के आधार पर पावर जनरेशन करते हैं।
दिल्ली विधानसभा ने आज बजट 2025-26 ध्वनि मत से पारित कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने बजट को ऐतिहासिक बताया। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA एकजुट है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। संसद के बाहर श्री पासवान ने कहा कि बिहार के NDA नेताओं ने कल नई दिल्ली में बैठक की और राज्य में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया।
हम लोगों की NDA की बैठक हुई और उसमें 5 दल और हमारे सारे नेता उस बैठक में एक साथ मौजूद थे। NDA मजबूती से आगे बढ़ रहा है, विपक्ष एक साथ है नहीं है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पे चल रही है। कांग्रेस राजद में ही अब अगर खींचातानी चल रही है तो ऐसे में ये उनकी चिंता है, हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में संदिग्ध उग्रवादियों ने पंजाब प्रांत के 6 लोगों की ग्वादर जिले में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया है कि कल देर रात हथियारबंद लोगों ने एक बस में लोगों पर गोलीबारी की। हमलावरों ने 3 अन्य लोगों का अपहरण भी किया। अभी तक किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित ऑटोमोबाइल और कलपुर्जों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये नियम 2 अप्रैल से लागू होगा। ये टैरिफ अमरीका के बाहर असेंबल की गई और भेजी गई सभी कारों और ट्रकों पर लागू होगा। भारत दूसरे देशों को शीत श्रृंखला यानी कोल्ड चेन और वैक्सीन प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने नेपाल और मलावी को प्रशिक्षण प्रदान किया है और प्रभावी वैक्सीन प्रबंधन प्रणालियों का आकलन करने में सहायता की है। संस्थान के निदेशक धीरज शाह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि संस्थान तकनीशियनों और श्रमिकों को उपकरणों के उचित संचालन के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।
कोल्ड चेन के जो टेक्नीशियंस होते हैं या जो कोई वर्कर होते हैं जो कि वो इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं कि जिससे कि कोल्ड चेन का जो इक्विपमेंट है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो डीप फ्रीजर हो, चाहे वो सोलर इक्विपमेंट हो, वो ठीक तरह से चलता रहे और कोई खराबी आ जाए तो उसको तुरंत रिपेयर किया जाए जिससे कि वो वैक्सीन खराब ना हो।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पुरस्कार के लिए पात्र बच्चे की आयु 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान और न्याय दिलाने के उनके प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने मतुआ धर्म महामेला 2025 की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मतुआ समुदाय के कल्याण के लिए कई पहल की हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 317 अंक बढ़कर 77,606 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 105 अंक बढ़त के साथ 23,591 दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $73.65 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समापन हुआ। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। एक रिपोर्ट।
हौसलों की उड़ान है, हर कदम एक पहचान है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिसमें 14 एथलेटिक्स और 4 पावरलिफ्टिंग में बने। इस आयोजन में 550 से अधिक पैरा खिलाड़ियों ने पदक जीते। पदक तालिका में हरियाणा 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि तमिलनाडु 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 8 दिवसीय इस आयोजन में 1300 से अधिक ज्यादा पैरा एथलीट ने हिस्सा लिया। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जीत के है इरादे, हम भारत की शान है।
आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने अप्रवासन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत दुनिया की सबसे कम आबादी वाले अल्पसंख्यकों के लिए भी सम्मान के साथ रहने का सुरक्षित स्थान है। संसद ने वित्त विधेयक पारित किया। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी। सरकार सहकारी आधारित सहकार टैक्सी सेवा शुरू करेगी। रक्षा मंत्रालय ने नाग मिसाइल प्रणाली और हल्के वाहनों की खरीद के लिए 2,500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का नई दिल्ली में रंगारंग समापन हुआ। और कुश्ती में रितिका हुड्डा ने एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।